بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرصا وتقرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات على محمد وعلى آله. حضرت محترم، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہمارے محترم جد الاسلام المسلمین جناب مولانا علی محمد علی صاحب کی واضح نامی کہ جن کا انتقال ہوا. ایصال ثواب کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں عام طور پر موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کبھی ہم زندگی کے بکھیڑوں میں الجھ کے تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے. لیکن جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، دوستوں میں اچانک کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، آج کل تو فوراً اطلاع مل جاتی ہے، تو فوری طور پر اطلاع ملتی ہے، تو اسلامی آداب یہ ہے کہ فوری طور پر ہمیں یہ کہنا چاہیے انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ انا للہ وانا الیہ راجعون مرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لیے، یہ ہمارے لیے ہے. کہ گویا ہم نے یہ سنا کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی محلے دار، کوئی جاننے والا، ساتھ آفس میں کام کرنے والا، ساتھ بزنس کرنے والا، جس سے بھی ہماری دو آفس لگی ہے، ایک دم اطلاع ملی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا یہاں سے یا چلی گئی، تو گویا فوری طور پر جو امیڈیٹ ریئیکشن ہے ایک مسلمان کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ اچھا وہ نہیں رہے اس دنیا میں، چلے گئے وہ تو ہم سے بہت محبت کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کوئی بات نہیں، وہ چلے گئے تو کیا ہوا، ہم کون سے رہنے والے ہیں، ہم بھی تو جانے والے ہیں. انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہم یہاں کے وہی نہیں، ہم نہ نوکری کے ہیں، نہ کاروبار کے ہیں، نہ اولاد کے ہیں، نہ بندہ کے ہیں، نہ کار کے ہیں، نہ کوٹھی کے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے لیے. وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانے والے. یہ لفظ راجعون اس قدر خوبصورت لفظ ہے، اس کا مطلب ہے واپسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے ہیں ہی نہیں، ہم تو کہیں اور سے یہاں پر آئے ہیں، اور عارضی طور پر آئے ہیں اور یہاں سے واپس آئے ہیں. عام طور پر واپسی کا جو سفر ہوتا ہے وہ خوش آئند ہوتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، آفس کی چھٹی، اسکول کی چھٹی، تو بچے خوش خوش واپس آتے ہیں، کیونکہ واپس آ رہے ہیں. ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں امام بارگاہ میں، ہم یہاں تو نہیں رہتے، ہم سب آئے ہیں اپنے اپنے گھروں سے، جب مجلس ختم ہو جائے گی واپس جائیں گے. تو اسی طرح اس دنیا میں انسان آیا ہے، یہاں کا نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے، اور وہ یہاں سے واپس پلٹ کر جائے گا. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان اصل میں یہاں مستقل باشندہ ہے ہی نہیں، اس کو جانا ہی جانا ہے. بہت سے لوگ جو साल हर साल से बड़ी लिस्ट में काम कर रही, आजकल काफी तादाद में वहां से फारिग किया जा रहा है, आप भी जानते हो। अब कोई 25 साल से वहां पे है, कोई 30 साल से, पता नहीं 40 साल से लोग हैं, लेकिन 40 साल से उनको यह एहसास है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम इस मुल्क के शहरी नहीं है, हम तो पाकिस्तानी शहरी हैं। कभी ना कभी वो लेटर आने वाला है हमारे पास कि अब आप वापिस जाने चाहिए। अभी एक इतफाक से कभी जल्दी तौर पर तैयार होता है इंसान के वो लेटर आएगा, कहीं अचानक आ जाता है, तो वो इंसान जिसको वो खत मिलता है कि अब आप वापिस आइए, तो उसकी कैफियत उतर ही होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल 20 साल 40 साल जितने अरसे से भी रहे, कुछ ना कुछ उन्होंने तैयारी की है, वापसी की तैयारी की, कुछ सैलरी की है, कुछ भेजा है, उनके लिए वापसी का सफर इतना तकलीफ का नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, खूब कमाया खूब बढ़ाया, एकदम उनके पास भी लेटर आ गया, योर सर्विस आर नो मोर रिक्वायर्ड। अब वो सोचते हैं मैं कैसे वापस जाऊंगा, किस मुंह से वापस जाऊंगा, अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर वालों के सामने। क्यों? इसलिए कि कभी उसने वापसी का सोचा ही, कभी उसने वापसी की तैयारी नहीं की, तो उसको वापसी का खौफ हुआ है। इंसान को भी वापसी का एक खौफ है जिसको हम कहते हैं मौत का खौफ। मौत का खौफ क्या है? मौत का खौफ जो है वो असल में वापसी का खौफ है कि हम वापिस जाएंगे तो हमसे हिसाब किताब दिया जाएगा कि जिस मकसद की खातिर तुम्हें भेजा गया था वो तुमने कितना अंजाम दिया, इसका क्या हल है। मैं अपने साथ जाकर किसी तालिब इल्म होते, कुछ तालिब इल्म पढ़ने वाले होते हैं, कुछ जरा कम पढ़ने वाले होते हैं, तो जब इम्तहान करीब होता है तो खौफ जरा होता है, एग्जामिनेशन फोबिया का शिकार हो जाता है। एग्जामिनेशन का खौफ, इम्तहान का खौफ जो है वो बाद तालिबे इल्म को होता है, बाद बुखार हो जाता है, ऐसे और कैफियत हो जाती है, उसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है? एग्जामिनेशन फोबिया और डेथ फोबिया दोनों का हल एक लफ्ज के अंदर है और वो है प्रिपरेशन, वो है तैयारी। जिसने तैयारी कर ली उसके लिए कोई खौफ नहीं है, और अगर किसी ने तैयारी नहीं की है तो उसके लिए तो खौफ है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद करीम के तक तलब से हिसाब होगा, लोगों का हिसाब बहुत करीब आ गया है, हिसाब बहुत करीब आ गया है, लेकिन वहों की गफलत मौरिदून, लेकिन वो गफलत में पड़े रहे हैं, अभी तक खुदा से दूर है, एराज कर रहे हैं, वक्त करीब आ गया है लेकिन उनको एहसास नहीं है। वो देख रहे हैं आमतौर पर क्या हो रहा है आस पास उनके, आजकल तो पैदल पे खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये सिलसिला कोई नया नहीं है, हर दौर में इंसान पैदा भी होते हैं और मरते भी, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि पैदल पे खबरें, हर तरह के लोग एकदम खबर आती है, कोई बड़ा आलिम दीन गुजर गया, कोई अल्लामा गुजर गए, कोई जाकिर गुजर गए, कोई अदाकार गुजर गए, कोई खिलाड़ी गुजर गए, जवान गुजर गए, जवानों को हार्ट अटैक हो गए, जवानों को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, नौजवानों को ये कैफियत। तो ये खबरें हर दौर में ऐसी आती रही है, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है जैसे एकदम फैदर पे खबरें आ रही हैं। अभी जो पैदल पे खबरें आ रही हैं उनमें इंसान को यह एहसास तो होता है ना कि एक नए दिन हमें भी जाना है, कोई इस्लाम में इतनी ताकीद है कि आप नमाज जनाजा में शिरकत करें, तजीद तकदीर में शिरकत करें, ताकि इंसान को एहसास हो कि हमें भी जाना है। और जब इंसान किसी और के जनाजे को लेके जाता है कब्रिस्तान, तो थोड़ी देर के लिए एहसास होता जरूर है, ये तो है, हर इंसान को थोड़ी देर के लिए एहसास होता है कि हमें भी आना है, लेकिन फिर दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है कि आना तो है लेकिन अभी टाइम है। अच्छा, ये जो आवाज होती है कि आना है, यकीन आना है, इसे लोग इनकार कर नहीं सकता, लोग खुदा का इनकार करते हैं, रसूल का इनकार करते हैं, आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, मजाहिब का इनकार करते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं, किसी को आपने मौत का इनकार करते हुए सुना है? कोई मौत का इनकार नहीं करता, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है कि कोई माई का लाल उसे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मौत का इकरार जरूरी नहीं है कि इंसान की जिंदगी पर कोई कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हो। मुमकिन है कि मौत का जो ये एहसास है कि हम मर जाएंगे, एक नए दिन में जाना है, इंसान की जिंदगी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो। और इंसान ये सोचता बस बहुत से लोग इस तरह है, ये सोचते हैं कि अब तो जिंदगी एक मिल गई है आरजी से ही, जिस कदर अयाशी कर ली कर लो उसके बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नहीं, जितनी अयाशी कर ली कर लो ये दुनिया दोबारा नहीं बनेगी। तो मौत का एहसास है लेकिन इस एहसास से उसके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आई। असल में जिस चीज से इंसान के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है वो मौत का एहसास नहीं है, वो हयात बाद मौत का एहसास है कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है, मरने के बाद हिसाब किताब है, मरने के बाद रिवॉर्ड और पनिशमेंट है, जन्नत या जहन्नुम है, सिराज है मिजान है मिरसाद है, ये मकाम है। इस चीज का अगर एहसास हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो एक आवाज आती है कि हाँ जाना है लेकिन शायद अभी नहीं जाना है, तो फिर कब जाना है इसका भी किसी के इल्म में नहीं कब जाना है। एकदम जब फरिश्ता मौत सर पे हाजिर होता है और वो कहते हैं चलिए, अब इंसान सोचता है कितनी जल्दी उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, एक फुर्सत गुनाह मिली होगी चार दिन, तो इंसान सोचते बस इतनी जल्दी। ये वो मौका होता है जब हर शख्स तौबा करता है, हर शख्स फिदा हजार आदमी मौत आलू इन्नी तुबतुल आन, जब मौत उनके सर पे हाजिर हो जाती है वो कहते हैं मैं तौबा करता हूं। और ये वो तौबा है जो काबिल कबूल नहीं है। जब मलकुल मौत आता है आंखों के सामने से हिजाब बढ़ जाते हैं, और जब हिजाब बढ़ जाते हैं तो इंसान को अपनी हकीकत इस कायनात की हकीकत और अपना अंजाम नजर आने लगता है, उस वक्त हर शख्स तौबा करता है, फिरौन ने भी तौबा की। लेकिन ये वो वक्त होता है जब तौबा का दरवाजा बंद होता है, इससे पहले पहले तक तौबा काबिल कबूल है। कि जो इंसान कहता है अब मैं तौबा करता हूं तो मौत का फरिश्ता कहता है नाउ इट्स टू लेट, मेरे आने से पहले पहले आपने तौबा। तो ये एहसास के अभी टाइम है, ये शैतान की तरफ से होता है कि शैतान इंसान को बाद गुनाह भी करवाता है कि तौबा कर लेंगे फरिश्तों को खबर होने तक। और जब तौबा की तरफ इंसान मायल होता है, जब एहसास होता है कि मैंने गलत काम किया, फिर तो शैतान कहते कर लेना यार तौबा, किसी के तुम क्या जल्दी है, तुम जवान हो अभी एक उम्र पड़ी है, रिटायरमेंट के बाद तौबा कर लेना, अच्छा हज करने के लिए जाना है वहां से जीरो मीटर हो गया। यानी शैतान इंसान को एक ऐसी चीज की उम्मीद दिला रहा है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अनसर्टेन है, और वह इंसान की जिंदगी। जो चीज सबसे ज्यादा अनसर्टेन है इंसान की जिंदगी, उसकी तरफ तो शैतान में कहता है कि बस जिंदगी की उम्मीद पर तौबा को पोस्टपोन करो, जिंदगी की उम्मीद पर पहले तौबा की उम्मीद पर गुनाह करवा दिया, अब जिंदगी की उम्मीद पर तौबा को पोस्टपोन करवा दिया। और फिर इंसान जब जिंदगी से गुजर जाता है तो अफसोस के साथ गुजरता है। किसी ने बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज को बयान किया है कि एक इंसान ने बाद में देखा कि वो आलम बरज़ख में है, बहुत से लोगों से उसकी मुलाकात हुई, किसी बिजनेसमैन से हुई, किसी पॉलिटिशियन से हुई, किसी आम आदमी से हुई, हाउसवाइफ से हुई, स्टूडेंट से हुई। उसने कहा कि अच्छा दुनिया में वापस जाने का इरादा है? उसने कहा कि हाँ जाना तो मैं चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हैं आप? वो कहते हैं बस मुझे एक हफ्ते की मोहलत मिल जाए, मैं दुनिया में जाके बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे करने चाहिए थे मैं नहीं कर सका, अब मैं जाके करना चाहता हूँ। कोई कहता है मैं जाना चाहता हूँ एक दिन की मोहलत मिल जाए, मैं मेरी माँ मुझसे नाराज थी, मैं पाँव पड़ जाऊंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा काश मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाए कि मैं दुनिया में चला। कोई कहते हैं दो घंटे की मोहलत मिल जाए मैं जाऊंगा किसी का माल मेरे जिम्मे है ना जाए ना उसको दे दूं, जान छुड़ाऊं, माफी मांगूं, फिर वापस आ जाऊं बेशक मर जाऊं। दस मिनट की मोहलत मिल जाए ये काम किया, फिर उस इंसान की आंख खुल गई, हमारी आंख नहीं खुल रही है ना खुल है। अगर आंख खुल जाए इंसान की और ये एहसास हो कि हम अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंचे जहां से वापस होकर नहीं, हमारे पास वो मोहलत है कि हम किसी से जाके माफी मांग सकते हैं, हमारे पास वो मोहलत है कि हम किसी का हक उसको दे सकते हैं। अच्छा, माफी मांगना तो जरा मुश्किल काम होता है, उसके लिए थोड़ी जहमत करनी पड़ती है, और माफ करने में कौन सा खर्चा होता है? अगर इंसान ये समझे कि माफी भी मांगू हम इंशाल्लाह, लेकिन कम से कम जिन लोगों के जिम्मे जिन लोगों ने मेरे साथ ना इंसाफी किया, कुछ भी किया, मेरे नाराजगी हुई, मैं अपनी तरफ से माफ करता हूं, उसके लिए तो सच है कि उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो ये मोहलत जो है जिंदगी के अंदर, जब यहां से इंसान चला जाएगा ये मोहलत खत्म हो गई। सलावत पढ़ाए मोहम्मद पढ़ा है, इंसान हालत में पड़ा हुआ है। एक और चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूं, क्योंकि मोमिना की मजलिस है, एक मां की मजलिस है, और मां का मकाम बहुत बुलंद है, मां के हुकूक बहुत सारे हैं, बाप से भी ज्यादा। एक रिवायत में है कि एक साहबी ने पैगंबर अकरम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा हक किसका है? कहा तुम्हारी मां। तीन मरतबा सवाल किया, तीन मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी मां का हक सबसे ज्यादा। फिर जब चौथी मरतबा सवाल किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे बाप का। फिर इस रिवायत के मुताबिक अगर देखें तो मां के हुकूक जो है बाप से तीन गुना ज्यादा, क्योंकि औलाद के लिए तो मां की खिदमत और बाप की खिदमत बराबर है, और दोनों के लिए कुरान करीम में हुक्म यह है कि उनके सामने अपने कांधों को आजीजी से झुका के रखो और उनसे तेज लहजे में गुफ्तगु ना करो, उनके लिए दुआ करो रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बारिला उन दोनों पर रहम फरमा मां और बाप पर जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारी तरबियत, हमारी तरबियत में जो उन्होंने जहमत उठाई उसका सिला ले सकते। एक साथी ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूलल्लाह मैंने अपने वालिदा की बहुत खिदमत की, बहुत खिदमत की, बहुत खिदमत की, क्या मैंने उसका हक अदा किया? आपने कहा नहीं किया। अच्छा, वापस क्या होना और खिदमत? फिर कुछ अरसे के बाद आया कहा या रसूलल्लाह मैंने अपने वालिदा की और खिदमत की, और खिदमत की, अब क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? आपने कहा नहीं किया। फिर गए और खिदमत की, और खिदमत की, फिर और सवाल कर लिया। आपने फरमाया तुम बार बार मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम्हारी मां ने जो अपने वतन में तुम्हें एक दिन तक का तुमने आज तक उसका सिला नहीं दिया, एक दिन का पता नहीं कर सकता, जितनी भी खिदमत करो खिदमत करना तो बढ़ जाए, उससे कोई इंकार नहीं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वालदैन की खिदमत करके उनकी खिदमत का सिला देगा, ये मुमकिन नहीं। तो इंसान की जिंदगी पर जो असरात है वालदैन के और खासतौर पर मां के, खासतौर पर मां के, उसका हक इंसान अदा नहीं कर सकता जितना भी कर ले, और इसका एहसास भी औलाद को नहीं हो सकता। देखिए, वालदैन ने हमारे लिए जो जहमत की है उसका एहसास हमें नहीं होता। उसका एहसास कब होता है? उसका एहसास जब होता है जब हम खुद मां बाप बनते हैं, जब हम वालदैन बनते हैं, जब हम अपने बच्चों के लिए खिदमत करते हैं, जब अपने बच्चों के लिए जहमतें उठाते हैं, जब अपने बच्चों के चौसले उठाते हैं, फिर तो यह एहसास करना चाहिए कि हमारे वालदैन ने हमारे लिए क्या काम किया। अजीब बात है, नौजवानों में यह फैशन चल पड़ा है कि वो वालदैन से पूछते आपने हमारे लिए क्या किया, और आज भी हद है कि सवाल करें अपने वालदैन से आपने हमारे लिए क्या किया। अगर वो तुम्हें यूं ही छोड़ देते गला घोटना जरूरी नहीं था, जब तुम इस दुनिया में आए थे ना खा सकते थे, ना पी सकते थे, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, अगर तुम्हें यूं ही तुम्हारे हाथ में छोड़ देते ना तुम दुनिया से गुजर जाते। क्या नहीं किया उन्होंने, कितनी जहमतें उठाई मैंने कहा ना इसका एहसास कब होता है, जबकि इंसान खुद माँ बाप बनता है फिर उसका एहसास होता है, और कितना इंसान की जिंदगी पर असर है उसका। अल्लामा इकबाल कहते हैं, सीरत फरजंद हा आज उम महात जौहरे सिल्को सफा आज उम महात, कि औलाद की जो सीरत बनती है उसका नक्श कौन बनाता है, मां बनाती है। सबसे पहली दर्जगाह क्या है, मां की गोद। सबसे पहली दर्जगाह मां की गोद। जौहरे सिल्को सफा जो भी इंसान के अंदर कमालात है, जो भी खूबियां हैं, सबसे पहले इन खूबियों के इंसान ने कहां से हासिल किया, मां की आगोश से हासिल किया। वो के इंसान की तरबियत पर बहुत सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं, बात ठीक है, बाद वालदैन बहुत मेहनत करते हैं और आगे कुछ नालायक नहीं जाते। नूह अलैहि सलाम की मिसाल कुरान में मौजूद है, क्या नूह अलैहि सलाम ने ज़हमत नहीं की होगी, नूह अलैहि सलाम ने कोई कोताही की होगी अपने औलाद की तरबियत में, नहीं की होगी, लेकिन ऐसा हो गया, क्योंकि इंसान की तरबियत के ऊपर बहुत सारे अवामिल होते हैं, असरअंदाज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन बुनियाद जो है वो कहां पड़ती है, सबसे पहली बुनियाद पड़ती है आगोश मादर से। इसीलिए इस्लाम में सबसे ज्यादा हक किसका है, मां का है। जो लोग सवाल करते हैं कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक क्या है, मैं कहता हूं इस्लाम में ना खवातीन के हुकूक है ना मर्दों के हुकूक है। अगर इस्लाम से कोई सवाल करता है कि मेरे हुकूक क्या है, इस्लाम आपसे सवाल करेगा आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप बाप हैं, आप बेटा हैं, आप भाई हैं, आप क्या हैं? कोई खातून सवाल करेगी इस्लाम से पूछेगा आपका स्टेटस क्या है, आप बेटी हैं, आप बीवी हैं, आप बहन हैं, आप माँ हैं, क्या है? जो आप अपना स्टेटस बताएंगे कि मैं भाई हूं, मैं शौहर हूं, मैं बेटी हूं, मैं बहन हूं, जो भी स्टेटस होगा इस्लाम उसके मुताबिक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, ड्यूटीज देगा, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज जो है ना ये रेसिप्रोकल है, वन साइडेड नहीं। इस्लाम को ड्यूटीज लगाया जाएगा और जो ड्यूटीज आपके लिए इस्लाम असाइन करेगा उसी के मुताबिक आपके राइट्स होंगे, उसी के मुताबिक राइट्स होंगे। अब अगर किसी ने कहा कि मैं मां हूं, किसी ने कहा कि मैं मां हूं, तो इस्लाम उसके लिए कुछ ड्यूटीज असाइन करेगा। वो ड्यूटीज सबसे सख्त है, सबसे मुश्किल है, और फिर उसके अगेंस्ट इस्लामी कहेगा सबसे ज्यादा हुकूक तुम्हारे, सबसे ज्यादा हुकूक तुम्हारे। हमारे उस्ताद कहते थे कि ये जो कंपेयर करते हैं ना कि मसलन बाप जो है वो काम करता है और जॉब करता है और मेहनत करता है और पैसे लाता है और आपके नाम रखा गया इंतजाम करता है, ये सारी जहमतें इस्लाम के निजाम के मुताबिक तो बाप को करना होता है, उसके अगेंस्ट माँ को ये सब कुछ नहीं करना होता है। माँ के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, खातून के ऊपर नहीं है, मर्द के ऊपर रखा है इस्लाम ने। तो हमारे उस्ताद कहते थे कि इसका मतलब ये है कि वो जो उस खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस्लाम की निगाह में, वो बाप की जो जहमतें हैं, माशी खिदमात, माशी जहमतें हैं, उसके टक्कर पे है, उसके मुकाबले पर है। जब इस्लाम कहते ठीक है अगर एक शख्स ये काम करे तो दूसरा ये करे, जब एक इस्लाम का एक फैमिली का निजाम डेवलप होगा तो मां की जो खिदमात है वो बाप से कम नहीं होती, बल्कि कई एतबार से ज्यादा है। एक आम इंसान को काम कर नहीं सकता जब मां करता, खुदा ने उसके अंदर ये सिफत रखी, खुदा ने उसके अंदर वो जिसको कहते हैं आतिफा रखा है, वो जज्बा रखा है, वो जज्बात और एहसासात का मरता है, क्यों सारी जहमतें उठाती है, बर्दाश्त करती है, खुश खुश करती है, मोहब्बत से करती है, सारी जहमतें मोहब्बत के साथ करती है। जितनी मोहब्बत वालदैन को औलाद से होती है, दोबारा कंपेयर नहीं करना चाहता मैं, उतनी मोहब्बत औलाद को वालदैन से होती है। कभी ऐसा होता है कि वालदैन बीमार हों, अस्पताल में हों, प्रोलॉन्ग हो जाए बीमारी, एक वक्त ऐसा आता है कभी औलाद कहती है कि खुदा उनकी मुश्किल को आसान कर दे, दुआ करें खुदा आपकी मुश्किल को आसान कर दे। कभी वालिदैन साहब के सुने और आज बीमार हो, मासूर हो, अपाहिज हो, कभी किसी वालिदैन की जुबान से आपने सुना है कि उसकी मुश्किल को आसान कर दे? नहीं सुना हो सकता। ये जुमला कभी माँ बाप के जुबान में आता है, लेकिन औलाद के जुबान पे आ जाता है। अच्छी औलाद, नेक औलाद की बात कर रहा हूँ मैं, नाराज औलाद की बात नहीं करती कि कभी वो भी कहती। अल्लाह ने वाली बहुत कहते थे कि किसकी मुश्किल, जो कहते हैं अल्लाह मुश्किल को आसान कर देता। अल्लाह ने वाली कहते थे किसकी मुश्किल, उनकी मुश्किल तुम्हारी मुश्किल, किसकी मुश्किल के बारे में कह रहे हैं, अल्लाह मुश्किल को आसान कर देता। तो जितनी मोहब्बत वालदैन को होती है औलाद से, औलाद को उतनी मोहब्बत वालदैन से शायद नहीं होती। खुदा करे कि मुकाबला नहीं करते, लेकिन जो अमली तौर पर चीजें नजर आती तो माँ बाप के हक हम अदा नहीं कर सकते। चाहे वो बूढ़े हो जाए, गरीब हो जाए, घर में कोई काम ना करें, बल्कि वाले बूढ़े होते घर में कोई काम नहीं करते, कोई बात नहीं, उनका वजूद उनकी सरपरस्ती एक बहुत बड़े लेवल। हमें अंदाजा नहीं है कि कितनी ऐसी मुसीबतें हैं हमारी जिंदगी में जो खुदा मंदिर उनके वजूद की बरकत से कर सकते। और जिस कदर खुलूस के साथ वालदैन, खासतौर पर माँ, जिस कदर खुलूस के साथ एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, दुनिया में कोई और इंसान नहीं करता। माँ की दुआ जुबान से करना जरूरी नहीं, उसके दिल से दुआ निकालनी, उसके दिल से दुआ निकालनी। साहब की वादा का इंतकाल हो गया, वो इस्लामाबाद में रहती थी, उन्हें कोई जहमत नहीं थी, एकदम अचानक तबीयत भी खराब नहीं थी, एकदम अचानक इंतकाल हो गया। ऐसा भी होता, ऐसे वालदैन, ऐसे वालदैन होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम औलाद से खिदमत ना लें, औलाद से खिदमत करें। अब इसका क्या नुकसान हुआ, जो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस कदर खुलूस के साथ जो दुआएं देने वाली मां थी वो उसकी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान इंसान के लिए है बस, क्योंकि मगरिब का वक्त नजदीक है, इसलिए जब हम ईसा अलैहि सलाम की मजलिस करते हैं तो उसका एक मकसद ये होता है कि हम अपने मरने वाले के लिए सवाब का तोहफा भेजे और जिनके तसल्ली और तशक्की के लिए, तसलियत के लिए, ताजियत के लिए आए हैं उनको ताजियत के लिए चलवा दें। और हमारे यहाँ रस्म यह है कि हम ताजियत के लिए अहले बैत के मसाइब को बयान करते हैं। जब किसी का जवान चला जाता है तो हम जवान का तस्करा करते हैं, बूढ़ा चले जाता है बूढ़े का तस्करा करते हैं, बच्चा चले जाता है बच्चे का तस्करा करते हैं, क्योंकि जो दुख और जो मसायब खानवादे इसमत तहारत पर हुए वो किसी पर, क्योंकि एक माँ के सारे सवाल की मजलिस है। तो आपने जाकिर अव्वल से भी सुना कि सबसे ज्यादा मुसीबत अगर किसी पर पड़ी तो उस बीवी पर पड़ी जिसने कहा सुब्बत अलैया मसायब लो अन्ना सुब्बत अलल अय्याम से बनाया सुब्बत अलैह है मसाइल। बात लोग कहते हैं कि शहजादी ने अपने बाबा के फराक को ये बात कहा, हाँ ये पूरी एक नात है उसके, उसका एक शेर है और उसमें अल्लाह के रसूल की रहलत को, उनके फराक को भी बयान किया गया है। और जिसके बाबा पैगंबर इस्लाम हो उनके रहलत में क्या कैफियत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस जुमले के अंदर सुब्बत अलैया मसायब, वो मसायब जो मेरे ऊपर पड़े, जो मेरे ऊपर पड़े, ठीक है, हर बेटे अपने बाप की बराबर होती है, यह हक है उसको, उसको अपने बाप की मोहब्बत याद आती है। लेकिन कोई ऐसी बेटी है जिसको लोगों ने आगे कहा हो कि दिन के वक्त रो लिया करें या रात के वक्त रो लिया करें, ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता ना। فرمایا صحبت علیہ مسائب، وہ مسائب تو میرے اوپر پڑے. اب پوچھتے شہزادی کو کون سی مصیبت ہے جو آپ پر پڑے؟ کہتے وہ روزے روشن پر پڑتی، شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے. تو شہزادی کہیں گے دیکھو تاریخ کا تو کون سی مصیبت. روایت میں ہے کہ جب آیت تکفیر نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، تو اللہ کے رسول 6 مہینے تک نماز کے بعد دروازے سیدہ پہ آتے صحابہ کرام کے ساتھ اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبی. 6 مہینے تک یا رسول اللہ، ایک دن بہت ہے، 2 دن بہت ہے، 1 ہفتہ بہت ہے، 2 ہفتے بہت ہیں، یا آپ مسلسل اس دروازے پہ آ کے سلام کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہیں گے ہاں، اس دروازے کی عظمت کو پہچانو، اس گھر کی عظمت کو پہچانو، اس گھر کے مکینوں کی عظمت کو پہچانو، کون رہتا ہے اس گھر میں. اور اگر اللہ کے رسول کے رہنا کوئی ابھی آپ کا کفن پہلا نہیں ہوا کہ مسلمان اس دروازے پر آئے تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں، کوئی مر جاتے ہیں تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں، لیکن تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے سجدہ کی آواز آئی، اس گھر میں میں رہتی ہوں، رسول کی بیٹی، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، لیکن آنے والا اس پر جسور تھا کہ اس نے کہا کہ میں اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ چلا دیتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ دھمکی دی، آگ نہیں لگائی، مان لیا آگ نہیں لگائی، دھمکی دی، اس دروازے پہ کھڑے ہو کے دھمکی دی جس دروازے پہ اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہوا کہ ایک مرحلہ وہ آیا جب یہ بیوی دیوار اور دروازے کے درمیان تھی تو دروازے کو اس طرح گرایا گیا کہ ان کی آواز بلند ہوئی، یا پھر سب سے دی سے میری مدد کو اور میرا محسن شہید ہو گیا. جا کے تو دیکھے کہ محسن کی شہادت کا سبب کیا ہے. اور ایک مرتبہ جب فضا آتی ہے تو پوچھتی ہے کہ حسن کہاں ہے، علی کہاں ہے، کہا کہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے، ابو الحسن کو لے کے جانا چاہتے ہیں. جیسے یہ سنا کہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے، ابو الحسن کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی اپنی مسلی کی شکستگی کو بھول گئی، محسن کی شہادت کو بھول گئی، کھڑی ہوتی ہے، چادر سنبھالتی ہیں، اندر داخل ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں لوگ علی کو لے جانا چاہتے ہیں، آگے بڑھ کے علی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں، کہتی میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی. ایک ظالم روایت بیان کرتا ہے کہ میرے آقا نے جب یہ دیکھا کہ شہزادی نے بہت مضبوطی کے ساتھ علی کے دامن کو تھاما ہوا ہے، ایک مرتبہ اس نے مجھے اشارہ کیا، اور جب اس نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے اپنا تازیانہ نکالا اور شہزادی کے ہاتھ میں تازیانہ کی بہت شکر کیا، تک کہ شہزادی کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹا اور اب علی کو لے جانے میں کامیاب ہو گئی. ایک مرتبہ شہزادی پیچھے پیچھے آ گئی، مسجد کے قریب جا کر کہا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں دعا کروں گی. ابھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ بولنے کے نہیں تھے، ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئیں، لوگ خوفزدہ ہو گئے، ایک مرتبہ علی کو چھوڑ دیا گیا. میں کہوں گا شہزادی آپ کی قسمت ہے کیونکہ آپ نے ایک جملہ کہا اور علی کو رہا کر دیا گیا اس وقت. لیکن عصر عاشور میدان کربلا ہے، آپ ہی کا فرزند ہے اور آپ کی بیٹی ہے جو 70 قدم کے فاصلے میں دیکھ رہی ہے. ہمارے جوانان جس کو اس عمل کی دولت سے نوازنا فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، اس مجلس سے ادا کا ثواب، تلاوت قرآن کریم کا ثواب، مرحومہ مقبولہ کی روح کو اسلامی فرما، ان کی قبر کو روشن منور فرما، عذاب قبر اور حشر کے کٹ سے محفوظ فرما، روض حشر شفاعت اہل بیت سے بے رحمت فرما، جو دیکھیاں انہیں اپنی زندگی میں انجام دیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی جانب سے اس کا کئی گنا اجر و ثواب عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں مستجاب فرما، بارگاہ کی پسمان دیوان کو صبر جمیل عطا فرما، پسمان دیوان کو محرومہ کے لیے نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجیے گا. مرحوم نبر سلطان جنتے مختار احمد کی سارے